अब सबसे विनती है, हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और एक मिनट के लिए हम सब मंत्र उच्चारण के द्वारा मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान करेंगे। पहले हम बोलेंगे, जब हम बोल के समाप्त करेंगे फिर आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। बहुत सरल है, बच्चा भी बोल सकता है, लेकिन हृदय को एकाग्र करना है ताकि भगवान की कथा हमारे कानों के द्वारा हृदय के अंदर प्रवेश करे। कृष्ण कथा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में आके विराजमान हो, इसलिए मन को एकाग्र करना है। आप हमारे पीछे उच्चारण कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय,
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय,
कृष्णाय वासुदेवाय,
देवकी नंदनाय च,
देवकी नंदनाय च,
नंद गोप कुमाराय,
नंद गोप कुमाराय,
गोविंदाय नमो नमः,
गोविंदाय नमो नमः,
जय श्री कृष्ण चैतन्य,
जय श्री कृष्ण चैतन्य,
प्रभो नित्यानंद,
प्रभो नित्यानंद,
श्री अद्वैत,
श्री अद्वैत
गदाधर,
गदाधर,
श्री वास आदि,
श्री वास आदि
गौर,
गौर
भक्तवृंद,
भक्तवृंद,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम हरे राम,
हरे राम हरे राम,
राम राम हरे हरे,
राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है बियानी परिवार के निवास स्थान पे शिखर नगर में। आज सायंकाल को हरि कथा में तीन, कल सुबह और कल शाम भी श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं के अनुसार हम साथ में बैठेंगे और कुछ मंथन करेंगे, हमारे जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए। अभी भजन आप सबने गाया, आपके सामने पर्चा है, इसके ऊपर एक थोड़ा ध्यान दे के हम देखते हैं क्या है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, दो बातें, एक तो नाम है और दूसरा धाम है। किसी को भी इस दुनिया में बगैर नाम से पहचाना नहीं जाता, ये सत्य है कि नहीं? किसी का नाम रखेंगे तब पहचान होगी ना, इसलिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहला शब्द है। जब कोई कहता है कि भगवान का कोई नाम नहीं है, तो वो हमारे को असल में भ्रम में डाल देता है। फिर भगवान किसको कहेंगे? अब किसी आदमी जाते कि आदमी तो कहना और बात, बगैर नाम के तो आपकी तरफ मुड़ के कोई नहीं देखेगा। बहुत दुकानदार के पास दुकान पे जाओ और को भैया कुछ दे दो, तो कुछ तो कुछ दे दो, क्या कुछ नाम लो ना किस चीज का, यही बोलेगा ना। तो इस दुनिया के अंदर बगैर नाम के पहचान नहीं होती है। इस दुनिया में ऐसे है कि नहीं है? बच्चे का जन्म लेते ही माँ बाप कहते जल्दी नामकरण कर लो, नहीं तो उसका नाम बिगड़ जाता है। 6 दिन में नाम कहते हैं, नहीं तो महीने के अंदर कम से कम करो, नहीं तो 10-15-20-25 नाम हो जाएंगे, पता नहीं क्या नाम है इसका। तो नामकरण करते हैं कि नहीं करते? तो ये नाम कृष्ण, ये नाम भगवान का गर्ग आचार्य ने श्रीमद् भागवत में लिखा है कि आकर गौशाला के अंदर गोष्ठी में बैठकर ये नामकरण किया था। जो सबको अपनी ओर आकर्षण करे उसको कृष्ण कहते हैं। जो सबको अपनी ओर आकर्षण करे, जैसे चुंबक होता है, चुंबक क्या करता है? लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है ना। तो चुंबक में शक्ति है कि लोहे का टुकड़ा कहीं भी गिरा हो उसको अपनी ओर वो खींच लेगा। बना हुआ चुंबक भी लोहे का है, लेकिन चुंबक की शक्ति लोहे के टुकड़े से बहुत ज्यादा है। लोहे का टुकड़ा बहुत छोटा है, चुंबक बहुत बड़ा है। लोहे के टुकड़े को चुंबक खींच ले, ये चुंबक का अपना धर्म है। लेकिन लोहे का टुकड़ा चुंबक को कब नहीं चमकता है? जब वो अपनी असलियत को खो बैठता है, मिट्टी में पानी के साथ मिलकर जंग आलूद हो जाता है, रस्टेड लोहे का टुकड़ा जिसके ऊपर जंग लग गया, वो लोहे के ऊपर चुंबक के ऊपर रखो तब भी नहीं चमकेगा। चमकेगा लोहे का टुकड़ा, लोहे की कील, सुई, मिट्टी चढ़ जाए, पानी लग जाए, जंग लग जाए, तो वो नहीं चुंबक को चपकता है। तो चुंबक को नहीं क्यों चपकता है लोहे का टुकड़ा? क्योंकि उसके ऊपर जंग लग गया, उसने अपनी पहचान भुला दी। उस जंग आलू लोहे के टुकड़े का नाम बिगड़ जाता है। ऐसे हम सब भगवान के अंश हैं। ममायु अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवद गीता में भगवान सिंह ठोक के कह रहे हैं कि आप सब लोग जितने जीव हो वो सब मेरे अंश हो, और सनातन हो। सनातन का मतलब जिसका आज अंत नहीं हो, जो नित्य हो, जो सदा के लिए हो, उसको सनातन बोलते हैं। तो हमको, हम उन्हीं के अंश हैं, तो हमको उनकी ओर आकर्षण हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमको जंग लग गया है। भौतिक जगत के अंदर आने के बाद भगवान को भुला के संसार के साथ अपना संबंध ऐसा जोड़ के बैठे हैं कि वो चुंबक की जो हमारे और आकर्षण था वो हमको, चुंबक का आकर्षण तो है लेकिन हम उधर नहीं जा रहे हैं, ये हमारी समस्या है। क्या करना चाहिए? इसका इलाज क्या है? जंग उतार लो चुंबक से, बस। और कुछ भी नहीं करना है, एक रेगमार लेना है, सैंड पेपर लेना है, और लोहे के टुकड़े के ऊपर से जो लगा हुआ जंग है उतार दो। फिर लोहे के टुकड़े को ले जाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप जाके चुंबक को चपक जाएगा। चपक जाएगा कि नहीं चपक जाएगा? केवल लोहे से जंग उतारने की जरूरत है। ऐसे हमारे जीवन के ऊपर भी ये हरि कथा और हरि सत्संग के द्वारा जंग उतारने का अभियान और प्रयास किया जाता है, ताकि जंग उतर जाएगा तो अपने आप भगवान की ओर स्वतः खींचे जाएंगे। तो जंग जब तक नहीं उतरेगा तब तक चुंबक के साथ बैठा हुआ आदमी भी, भगवान के साथ बैठा हुआ आदमी भी, दुर्योधन के घर भगवान श्री कृष्ण चले गए थे ना, लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण को पहचाना तो नहीं, बोला इसको बांध दो, क्योंकि बहुत ज्यादा जंग लगा हुआ था। जंग क्या लगा हुआ था? वो तो पूरे का पूरा काले डामर में जैसे लपेटा हुआ होता, तो उसके ऊपर तो चुंबक कुछ भी नहीं कर सकता। तो कई लोग भगवान के साथ रहते हुए भी भगवान को पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन जिसका जंग उतर जाता है वो एकदम भगवान के साथ जाके मिलता है, लेकिन चुंबक से जब लोहा मिलता है तो चुंबक के अंदर घुस नहीं जाता है, लोहा गुम नहीं हो जाता है, लेकिन लोहे में शक्ति इतनी आती है कि दूसरे लोहे के टुकड़े को भी चपका लेगा। बड़ी लंबी लाइन लोहे के टुकड़ों की चपक जाएगी, लेकिन कोई गुम नहीं हो जाएगा लोहे का टुकड़ा। तो ये भी दूसरी मान्यता कि भगवान के अंदर जाने के बाद हम खत्म हो जाएंगे, कुछ रहेंगे नहीं, ये भी ठीक नहीं लग रहा है। ये सिद्धांत बहुत बड़े भारी सिद्धांत है, जिनको बहुत ये छोटे से भजन के अंदर किसी महात्मा के हृदय से ये भाव निकले। कृष्ण जिनका नाम है, जो सबको अपनी ओर आकर्षण कर रहा है, और इससे हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि इस दुनिया में हरेक को कोई ना कोई नाम जरूर होता है। भगवान का नाम नहीं होगा तो हमारा नाम कहां से आया? जो जिसने हमको पैदा किया उसका ही नहीं नाम होगा तो हमारा नाम कहां से आएगा? जो सोर्स में नहीं है वो ऑफशूट में कहां से आएगा? एक सिद्धांत है, जो मूल में नहीं है तो और कहां से आएगा? आएगा ही नहीं ना। तो भगवान का नाम है तब हमारा नाम कहां दुनिया में हो, नहीं तो हमारा नाम भी नहीं होता। और फिर धाम, किसी से पता पूछते हैं आप कहां रहते हैं, ये पूछना पड़ता है ना। दूसरा ये दुनिया की व्यवहारिक भाषा में पूछते हैं, भाई आपका नाम क्या है, कहां रहते हो, यही कहोगे ना। तो ये कहां रहते हो, इसका मतलब कोई स्थान होना हमारा, ये भी हमारी आवश्यकता है, ये हमारा परिचय है कि कहां रहते हो। धाम का अर्थ एक होता है जहां रहता है आदमी। तो कौन सा धाम है भगवान का? कहते हैं गोकुल मेरा धाम है। भगवान अपनी पहचान दे रहे हैं, इस दुनिया में हम जितने भी लोग रह रहे हैं उनको कोई भी पूछेगा तो नाम पूछेगा, उसके बाद उसका गांव पूछेगा, गोकुल मेरा गांव है। एक गोकुल तो अभी ब्रज में है, वृंदावन में है, वैसे पूरे ब्रज को ही गोकुल कहते हैं, 84 कोस जो भी ब्रज है ये गोकुल भगवान का धाम है। लेकिन भगवान का धाम तो आध्यात्मिक जगत में गोलोक धाम है, लेकिन भगवान जब इस धरती के ऊपर आते हैं तो अपने साथ अपने धाम को लेकर आते हैं। इसलिए ये जो धरती का टुकड़ा जो यूपी के अंदर इस वक्त वृंदावन कहते हैं, ये कोई धरती का टुकड़ा यूपी का नहीं है, ये गोलोक धाम से नीचे भगवान के साथ उतर के आया। कैसे? जैसे यहां का अपना प्रधानमंत्री अपने देश का किसी और देश में जाता है, तो जहां भी जाता है तो उसके साथ भारत के पूरा मंत्रिमंडल जो भी उसके साथ जाएंगे, जहां जाएंगे भारत का अपना ध्वजा लगाएंगे, या जितने भी यहां एम्बेसीज हैं चाणक्यपुरी में, जितने भी दूतावास हैं, तो हरेक का अपना अपने देश का ध्वजा लगी हुई है ना, उसके अंदर कानून भी उसके देश का चलता है ना। तो ऐसे भगवान जब यहां आते हैं तो अपने धाम को इस धरती के ऊपर लाते हैं परिचय देने के लिए कि मेरा एक धाम नित्य है, और उसके वो उसको नीचे धरती को, इसलिए वृंदावन के वृंदावन में भगवान का कानून लगता है, संसार का कानून नहीं लगता है। जैसे काम क्यों जाते हैं, किसी एम्बेसी में क्यों जाते हैं आप, यहां से यूएस एम्बेसी में क्यों जाएंगे, ब्रिटिश एम्बेसी में क्यों जाएंगे, चाइनीज एम्बेसी में क्यों जाएंगे, वीजा लगाने के लिए है ना, वीजा लगाने जाएंगे ताकि उस देश में जाना है। ऐसे जिसको भगवान के धाम जाना है उसको भगवान के वृंदावन धाम में जाके वीजा लगानी पड़ती है। ये भगवत धाम जाने का, भगवान का इस धरती के ऊपर, भगवान का धाम नीचे उतर के आया है। जैसे भगवान अवतार लेने का मतलब नीचे उतर के आना, अवतार का मतलब है उतर के आना। ऐसे इतना आसान है, जैसे एक आदमी आपका भाई है कि आपका बेटा है, रहता है बाहर के देश में कहीं, जब जर्मनी में रह रहा है, आपके घर में कोई संकट आ गया, आपने फोन कर दिया, वो दूसरे दिन आएगा तो आप क्या कहेंगे, अभी अभी उतर के आ रहा है, अभी अभी उतर के आ रहा है, यही कहेंगे ना। ऐसे ही जब भगवान के भक्त भगवान को पुकारते हैं, जब यहां संकट आता है तो वहां से उतर के नीचे आ जाता है, इसमें कौन सी परेशानी। जब इस दुनिया में हमारा रिश्तेदार बुलाने के ऊपर आ जाता है तो भगवान तो हमारा नित्य रिश्तेदार है, इस दुनिया के रिश्तेदार तो इस जन्म के रिश्तेदार है, इससे पहले जन्म किसी हमारा उनका क्या रास्ता रिश्ता था उसका तो हमें मालूम भी नहीं है। भगवान तो कहते हैं मैं नित्य पिता हम अस्य जगत, तो माता धाता पितामह, मैं सारे जगत का माता हूं, मैं सारे जगत की पिता हूं, मैं पालन पोषण करने वाला हूं। इसीलिए हम रोज मंदिर में जाके यही मंत्र पढ़ते हैं, तुम्हें वो माता च पिता, यही पढ़ते हैं ना जाके। ये भी हमने कहां से सीखा, भगवान ने कहा कि मैं आपका माता पिता हूं, हम वही बात जाके भगवान को कहते हैं आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे पिता हो। ये तो आज भी बच्चों को मंदिर में जाते हैं तो यही मंत्र उच्चारण करते हैं, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या द्रोणम, तुम्हें सर्वम मम देव देव। तो ये कहां से हमने सीखा, भगवान ने कहा मैं तुम्हारा माता पिता हूं, तब हमको ये कहने का अधिकार मिला कि आप हमारे माता पिता हो ना, नहीं तो हमको कहां से मिलता। भगवान आता ही नहीं तो हम जानते कैसे कि भगवान है कौन। तो भगवान बहुत बड़ी करुणा दया करके आते हैं इस धरती के ऊपर और भक्तों के बुलाने के ऊपर आते हैं। ये भगवत गीता में जब ये चौथे अध्याय में ये जब प्रश्न उठता है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने ये गीता का जो योग का ज्ञान है इसका नाम है योग, इमम विवस्वते योगम। विवस्वान कहते हैं सूर्य देव को, उसका नाम है विवस्वान। सूर्य देव, सूर्य पोस्ट का नाम है, जैसे प्रधानमंत्री पोस्ट का नाम है, आदमी उसके ऊपर बदलता रहता है। तो इस वक्त जो सूर्य देव, इस वक्त जो आदित्य का पुत्र आदित्य है, उसका नाम है विवस्वान। उस विवस्वान को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने ये योग का ज्ञान दिया। इमं विवस्वते योगां प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। ये अविनाशी योग का ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया। फिर विवस्वान ने क्या किया? विवस्वे मनोह, विवस्वान ने अपने बेटे को दिया। किसको दिया? वैवस्वत मनु को दिया। वैवस्वत मनु सूर्य देव का पुत्र है। सूर्यवंश, जितना भी क्षत्रियो का सूर्यवंश आता है वो विवस्वत मनु से आता है। और ये सातवां मनु है जो इस वक्त जिस मनु के शासन में हम रह रहे हैं। ये बात इसलिए आपको कह रहे हैं, जैसे हमारे यहां लोकतंत्र में शासन 5 साल चलता है ना, ऐसे सृष्टि का शासन जब भगवान को चलाना होता है तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं। एक ब्रह्मा के दिन में 14 मनु आते हैं। इस वक्त 7वें मनु का शासन चल रहा है और उसका नाम है विवस्वत मनु। और जब एक मनु का शासन चलता है तो एक भगवान का अवतार होता है, 7 ऋषि होते हैं, ये सब भगवान चुनते हैं उनको, और फिर एक इंद्र चुना जाता है। लेकिन ये चुनता कौन है? भगवान। वोट से नहीं चुनते, वोट से ऋषि नहीं चुने जा सकते, वोट से इंद्र भी नहीं चुना जा सकता, वोट से मनु भी नहीं चुना जा सकता। ये तो भगवान अपने संकल्प से किस किस को चुनना है। तो मनु विवस्वान को। तो तब से ये भगवत गीता का ज्ञान हम मानव के लिए उपलब्ध हुआ, जब मनु को मिला। मनु से हमारा नाम मानव हुआ। हमको मानव क्यों कहते हैं? क्योंकि मनु की संतान है। और मनु को भगवान ने कहा मैंने भगवत गीता का ज्ञान दिया। और मनु ने किसको दिया? बोला अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया। मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को के ये गीता का ज्ञान। इक्ष्वाकु कौन है? बोला वो उस कुल में आगे चलकर महाराज अज्ज हुए, रघु हुए और दशरथ हुए और भगवान श्री रामचंद्र का प्रकट्य हुआ। तो भगवान श्री रामचंद्र के प्रकट्य से पहले भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया। इस प्रश्न के पीछे भगवान ने कैसे दुनिया के अंदर भगवत गीता की यह शिक्षा आई? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदो। ऐसे राज ऋषियों की परंपरा के द्वारा ये योग का, ये भगवत गीता जो ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, ये कैसे आया? परंपरा, राज ऋषियों की परंपरा। एक बात और भी आप सुन लीजिए, ये भगवत गीता की ज्ञान देने के लिए भगवान ने किसी सन्यासी को नहीं चुना था, किसी ब्राह्मण को नहीं चुना था, किसी अवधूत को नहीं चुना था, घर छोड़े हुए किसी को नहीं चुना था, एक राज ऋषि को चुना था, एक राजपुत्र को चुना था। क्योंकि राजा जो आचरण करेगा प्रजा अपने आप उसके पीछे आचरण करेगी। जो शिक्षा का दायित्व है वो राजा के ऊपर है। तो इसलिए राज ऋषियों के अंदर इस ज्ञान की परंपरा चली। आगे चलकर राज ऋषि ही नहीं रहे तो क्या हुआ? ये ज्ञान लुप्त हो गया। सकाले नेह माता योगो नष्ट परम तप। ये अर्जुन, समय के प्रभाव से राज ऋषि ही नहीं रहे, गीता के असली शिक्षा को समझने वाले ही नहीं रहे। तब से लगता है कि ये ज्ञान फिर नष्ट हो गया। अर्जुन को तो आश्चर्य लगा, अभी आपने कहा कि ये ज्ञान अव्यय है, अविनाशी, अभी आप कहते हैं नाश हो गया, ये कैसे हो गया? अव्यय का मतलब, अव्यय किसको कहते हैं? व्यय कहते हैं कमाई को। अव्यय का मतलब कितना भी कमाओ
खर्चा करो खर्च नहीं खत्म ही नहीं हो, उसको बोलते हैं अव्यय। अव्यय का मतलब है कितना भी खर्चा करो खत्म नहीं हो। तो ये ज्ञान जब अविनाशी है तो फिर नष्ट कैसे हो गया? उनका नष्ट होने का अर्थ है कि इसको जानने वाले नष्ट हो गए। इसके अंदर टीका टिप्पणी करके लोगों ने इसकी असलियत को ही बदल दिया। तो अर्जुन को बहुत बड़ा हृदय में ग्लानी हुई। तो इसका मतलब हम पांडु वंश में कोई राजऋषि नहीं रहा? यहीं आके ज्ञान खत्म हो गया तो हमारे कुल में कोई राजऋषि नहीं है क्या? जब अर्जुन के चेहरे के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने मायूसी देखी, चिंता देखी, गिलानी देखी, तब भगवान के मुख से ये शब्द लिखा, समयाते अद्य योग प्रोक्त पुरातन। आज ही मैं वो तुम्हें योग जो बहुत पुराना है आज तुम्हें दे रहा हूं अर्जुन। मेरा आश्चर्य हुआ अर्जुन को, अरे अभी तो मैं सोच रहा था कोई राजऋषि हमारे कुल में नहीं और भगवान मुझको ही चुन के दे रहे हैं, क्योंकि मैं राजऋषि हूं तो मुझमें ऐसी कौन सी विशेषता है कि भगवान ज्ञान मुझे दे रहे हैं? सह का मतलब वही ज्ञान जो मैंने विवस्वान को दिया था। मया भगवान श्री कृष्ण के मेरे द्वारा ते तुमको आदे अज आज मैं वो तुम्हें दे रहा हूं। कौन सा? पुरातन, जो परंपरा से पहले मैं देता आ रहा हूं। अर्जुन तो ऐसे देखने का, मुझे दे रहे हैं, क्या बात है, क्यों, क्या बात है मुझे में? भक्त ने कहा, भगवान ने कह दिया, भक्तो सी में सखा चैती है तद उत्तमम, रहस्य है तद उत्तमम, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो अर्जुन, तुम मेरे सखा हो। इस रहस्य को, इस गुप्त चीज को तुम जान सकते हो। तो भगवद गीता के ज्ञान का अधिकारी कौन है भगवान के शब्दों में? जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा भक्त है। जो भक्त है वो इस ज्ञान को समझ सकता है। भक्तो सी में सखा चेती। एक तो भगवान का भक्त होना, हम कहते हैं हम भगवान के भक्त है, भगवान को पता भी है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भगवान के साथ हमारा कुछ संबंध भी है, हम सबका संबंध है। उस संबंध को याद करना वापस, ये हमारा कर्तव्य है। अब ये जब भगवान ने कह दिया तो अर्जुन ने एक रिस्पांसिबिलिटी अपनी समझी, अपनी एक जिम्मेवारी समझी, एक दायित्व समझा कि लोग कहेंगे कि मैं इस परंपरा का राजऋषि हूं और फिर कहेंगे कि मैं कहीं अपने मित्र की बात को आंखें बंद करके तो नहीं मान लिया, मुझे तो कुछ प्रश्न पूछना ही चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को कोई संदेह न रह जाए, कोई शंका न रह जाए, कोई संशय न रह जाए। तब अर्जुन ने पूछा कि आप और हम बराबर उम्र के हैं, विवस्वान तो बहुत पुराने जमाने का है, सूर्यदेव पता नहीं कब था, उसको आपने ज्ञान दिया, वे मैं ये कैसे मान लूं? बड़ा अच्छा प्रश्न है अर्जुन का कि आप और हम उम्र हैं, साथ एक ही उम्र के हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया, ये कैसे मान लें? इस दुनिया में आदमी अपने आप को सीनियर कहने में बड़ा शौक होता है कि मैं बहुत पुराना हूं। लोग कहते हैं कभी 100-100 साल का महात्मा, 300 साल का है, ऐसे कुछ कहते हैं। तो महात्मा में कभी ऐसे एक महात्मा कहता, भगवान रामचंद्र की जब बारात आई थी ना जनक जी के घर में, तब मैं उस शादी में गया था, इतना पुराना हूं। दूसरे ने उसको पकड़ के बोला, तुम झूठ क्यों बोलते हो? बोला क्यों? बोला प्रसाद ने परोस रहा था, मैंने उस वक्त तुम्हारे को देखा ही नहीं था, तुम कहां से आए हो? एक दूसरे से इस दुनिया में ये होड़ लगती है कि पुराना कौन है। बड़ा आश्चर्य है इस दुनिया का, पुराना होना भी आदमी चाहता है लेकिन बूढ़ा भी नहीं होना चाहता। सीनियरिटी का भी उसको, मुझे प्रमोशन चाहिए, मैं सीनियर होना चाहता हूं लेकिन बूढ़ा नहीं होना चाहता हूं। कितना ये कंट्रास्ट है, कंट्रोवर्सल दो शब्द हैं, बूढ़े भी हो नहीं हो गए और सीनियर हो जाओ, ये संभव नहीं। और ये सबसे बड़ी दुनिया की आश्चर्य ये है कि कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है और सब सीनियर होना चाहते हैं। इस बच्चे को बोलो तुम जवान हो गए तो बड़ा खुश हो जाएगा, हाँ 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 मैं जवान हो गया, मेरी मूंछ निकलने लगी है, अब तो मुझे स्कूटर की चाबी तो मिलनी ही चाहिए। बच्चे से कह के देखोगे तुम जवान हो गए तो उसकी डिमांड शुरू हो जाएगी, गाड़ी कहाँ है मेरी, और गाड़ी क्या, उससे आगे भी कुछ लंबी डिमांड होती है।
लेकिन किसी को कहो तुम बूढ़े हो तो बड़ा नाराज हो गए, देखता है क्या कह रहे हो मेरे को, अभी तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं हुई है। चाहे वो दो माता जी गाड़ी में जा रही थी ट्रेन में, एक के दांत नहीं थे, एक के गाल वाल अंदर से लेके देखती भी नहीं थी, आपस में बोल लेती बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी, याद आता तो नहीं है लेकिन 45 से ज्यादा तो नहीं है। तो दूसरी पूछती है तुम्हारी उम्र बहन कितनी होगी, तुम्हारी 45 है तो हमारी 44-6 महीने होगी। ऊपर बच्चा था 25 साल का, ऊपर से नीचे गिरा और वहां वहां करके रोने लगा, बोला तुम क्यों रो रहा है, बोला तुम्हारी ये उम्र है तो हम तो पैदा ही नहीं हुए हैं, 25 साल तो पता नहीं कहां चले गए आपके, हमारा जन्म ही अभी नहीं हुआ है। तो इस दुनिया में आदमी कोई बूढ़ा होने को तैयार नहीं। तो अर्जुन ने जब ये प्रश्न पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया, बहुनी में जन्मानी तब चा अर्जुन तानी अहम वेद सर्वाणी न तुम वेतत परम तप। अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हुए हैं, मैं सब जानता हूं और तुम नहीं जानते, ये भगवान में और हम में अंतर है। भगवान पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा सब जानता है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि 10 दिन पहले आज के दिन 3:30 बजे हमने क्या किया था, वो भी याद नहीं आएगा हमको। 10 दिन की बात करो तो नहीं याद आएगा, जन्म तो दूर की बात है। तो भगवान कहते मुझे सब याद है तुमको याद, तो हमको भूल क्यों जाता है, प्रश्न ये उठता है हम भूल क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर बदलता रहता है, हमारे शरीर में परिवर्तन आता रहता है, बचपन जवानी बुढ़ापा, जैसे शरीर बदलता है इसके साथ हमारी सब याददाश्त बदलती जाती है। चेंज ऑफ बॉडी इज काज ऑफ फॉरगेटफुलनेस, हमारा भूलते क्यों है, क्योंकि हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, और मृत्यु के समय शरीर ही समाप्त हो जाता है तो शरीर की सारी बातें ही भूल जाती, सब कॉन्शियस में रहती है, माइंड के अंदर रहती है, दूसरे जन्म में वहीं से काम शुरू करते हैं, लेकिन हमको याद नहीं रहता है। ये भी भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की कि हमको याद नहीं है, अभी हमको याद हो के जिस घर में हम रह रहे हैं, जो हमारा चाचा ताऊ है इसने पहले जन्म में हमारा घर को आग लगाई थी और सारा सामान उठा के गया था, तो दुनिया लड़ मरेगी कि नहीं मरेगी, ये तो अच्छा है कि हमको पता नहीं, ये बहुत बड़ी भगवान ने कृपा की है, ये हमको याद आ जाए तो बहुत बड़ा, इस दुनिया के अंदर तो लोग लड़के मर जाएंगे, लेकिन भगवान को सब याद है, ये दोनों में अंतर है। अब अर्जुन ने दूसरा प्रश्न पकड़ लिया, आपका भी जन्म होता है, आपको तो अजन्मा कहते हैं, भगवान का जन्म कैसे होगा, अर्जुन तो बहुत बड़ा विद्वान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अर्जुन का ये प्रश्न है कि क्या आपका जन्म होता है क्या, तब भगवान को ये कहना पड़ा, अजो की संभव्य आत्मा मैं अजन्मा हूं, अजो मतलब मैं अजन्मा हूं, अव्य आत्मा मेरे शरीर में कभी परिवर्तन नहीं आता, अव्य का मतलब अविनाशी, आत्मा का यहां अर्थ है जो मेरा श्री विग्रह तुम मुझे देख रहे हो ये अविनाशी है, ये नित्य है, जब मैं चाहूं तो प्रकट कर लूं मेरी योग माया के द्वारा, नहीं तो मैं अपने आप को छुपा के रख देता हूं। तो अर्जुन ने दूसरा प्रश्न पूछ लिया, तो फिर आप आते क्यों हैं, जब आप अजन्मा हो तो फिर आप आते ही क्यों हैं, अथवा जन्म ही क्यों लेते हैं। तब भगवान ने ये उत्तर दिया जो सब हम जानते हैं, जो भारतवर्ष में सनातन संस्कृति के कैसे भी जुड़े हुए हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, ये सब जानते हैं, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए अधर्म को नाश करने के लिए समय समय के ऊपर प्रकट होता हूं, संभवामी का मतलब मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूं। अर्जुन ने फिर भी कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म स्थापन करने के लिए आपको आने की जरूरत है, किसी आदमी को भेज दो ना काम कर लेगा आपका, भाई किसी संदेश वाहक को भेजने से धर्म स्थापना तो हो सकती है ना, मैसेंजर से काम चल सकता है ना, बेटे को भेज दो ना, जगत ईसा को भेज दिया, जीसस क्राइस्ट को, सन ऑफ गॉड, तो एक धर्म की स्थापना कर ही ली ना, तो फिर आप स्वयं क्यों आते। अर्जुन का दूसरा प्रश्न है कि धर्म की स्थापना करने के लिए आपको आना पड़ेगा, ये तो इतना बड़ा काम नहीं है, किसी को करके आप कर सकते हैं, आपके भगवान किसी साधु संत के द्वारा भी तो कोई स्थापना कर ले, किसी को तो बड़ी बात नहीं है। तब भगवान को दूसरा श्लोक कहना पड़ा, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, मैं अपने प्रेमी साधु भक्तों की रक्षा के लिए आता हूं, और जब आता हूं तो दुष्टों का नाश अपने आप हो जाता है। तो ये बात अर्जुन को थोड़ा अच्छा लगा कि आप अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान का नाम ही भक्त वत्सल है, कभी कभी लोग कहते हैं आप भगवान केवल भारत में ही क्यों अवतार लेते हैं, और क्यों नहीं लेते, और जगहों पे क्यों नहीं लेते। हम पूछते हैं और जगहों में कोई भक्त बन के उसको बुलाता नहीं, हम क्या करें? अभी कोई इन्विटेशन देगा तब कोई आएगा ना। आज भाई युगल जी ने हमको कहा कि आपको यहां सीकर में आना है, और जो हमारे ललित जी का ये जो है 15वां शादी का क्या कहेंगे अपनी भाषा में, क्या कहेंगे वर्षगांठ, शुभ विवाह की वर्षगांठ है, तो आपको आना है, तो कोई बुलाएगा तब आएंगे, नहीं तो सीकर से हम कई बार बीकानेर रास्ते से गाते हुए गए हैं, कभी तो रुकने का कोई संभावना नहीं है। तो दुनिया का नियम है कि बगैर बुलाए तो भगवान बगैर बुलाए क्यों आएंगे? तुम्हारे पास कोई भक्ति नहीं है तो, और पहचानता भी नहीं तो बुलाएगा, एड्रेस का भी पता नहीं है तो बुलाएगा कहां से? किसी आदमी का एड्रेस भी आपके पास नहीं है तो कैसे बुलाओगे? तो कोई बुलाएगा तब आएगा ना। परित्राणाय साधुना, इस प्रश्न के ऊपर एक बार अकबर ने पूछा था बीरबल से। बीरबल एक बार छुट्टी लेके कह रहा है मैं जाना है, हमारे रामनामी का उत्सव होने वाला है, अप्रैल में छुट्टी दो। वापस घर में आया और बोलता है अभी हमारे नरसिंह भगवान के नरसिंह चतुर्दशी है, फिर 15 दिन छुट्टी दो। फिर बोलता है अब जन्माष्टमी है। फिर अकबर ने बोला तुम्हारे भगवान के पास कोई आदमी नहीं है, उसको भेज के धर्म चला ले, ये तो 12 महीने में तुम्हारी छुट्टी लंबी होती जा रही। बीरबल एक महीना छुट्टी के बाद जब वापस आया, अकबर के छोटे बच्चे का एक मोम का बहुत सुंदर सा पुतला बना के आया, वेक्स का एक बहुत छोटा सा बच्चे का ऐसा सुंदर शक्ल बना के आया साक्षात जैसे मूर्ति हो, और जो मासी उसको खिलाती पिलाती थी उसको कहा अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाना इसको, और जिस दिन महाराज शहंशाह अकबर अपने सिंहासन के ऊपर विराजमान हो और नवरत्न बैठे हो, सेनापति आदि बैठे हो सब, तब अब बच्चे को उठाते आना, मोम वाले बच्चे को, और जब अकबर की दृष्टि पड़ेगी तो अपने बच्चे को देखेगा तो मुस्कुराएगा बच्चे को देखकर। उस वक्त जो ये तालाब छोटा सा फाउंटेन है ना, बच्चे को उधर गिरा देना बस। एक दिन ऐसी सभा के अंदर वो जो मासी थी बच्चे को उठा के लाई, अकबर ने देखा, अकबर ने देखा, अकबर मुस्कुराया, बच्चे को मां ने पानी के छोटे से तालाब में फेंक दिया, और अकबर दौड़ता हुआ अपने सिंहासन से उतरा, भाग के जाके पानी के अंदर कूदा और उठाया, देखा ये तो मोम का बच्चा। बीरबल ये क्या? बीरबल ने कहा महाराज ये देखो नवरत्न आपके बैठे हैं, वो आपका सेनापति है, इसने ये आपके मंत्री है, किसी को भेजा होता ना छोटा सा बच्चा था निकाल लेता, आप क्यों हुआ सिंहासन उठ के कूद गए अंदर गए पानी में? अकबर ने कहा मेरे जिगर का टुकड़ा था, जब मैंने इसको गिरते देखा मुझे दुनिया में कुछ दिखाई नहीं दिया। बीरबल बोला महाराज ऐसे भगवान हमारा इससे भी ज्यादा दयालु है, जब भक्त को कष्ट में देखता है तो स्वयं इस धरती के ऊपर आ जाता है। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? कि भक्तों के प्रेम के कारण, भक्तों उसके दर्शन के लिए जब बहुत लालायत होते हैं तो भगवान उनके पास आने में अपने आप को रोक नहीं सकते। जैसे बछड़ा बछड़े को देख के गाय को लेकर से आते हैं जंगल से, जब बछड़े को आगे ले आता है ना ग्वाला तब गाय पीछे पीछे अपने आप आती है, बछड़े के पीछे जैसे गाय आती है ऐसे भगवान अपने भक्तों के पीछे आता है। उसने इसलिए भगवान का नाम भक्त वत्सल पड़ गया, वत्सल का मतलब बछड़ा। अर्जुन ने कहा बात तो आपकी ठीक लग रही है लेकिन आप एक साधु की रक्षा के लिए आए, जैसे प्रहलाद की रक्षा के लिए आप आए थे नरसिंहदेव बन के फिर चले गए, तो ये काम तो आप आए और करके चले गए, फिर विशेषता फिर भी कोई और कारण होना चाहिए ना आपके अवतार लेने का। इतना काम तो ठीक है, एक भक्त है किसी हिमालय की गुफा में बैठा है, उसको संकट आ गया, कोई राक्षस आ गया, आप उधर गए उसको बचाया, खत्म होगी कथा समाप्त हुई। जैसे प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंहदेव आप प्रकट हुए, खत्म हो गए। तब भगवान को एक और श्लोक कहना पड़ गया चौथे अध्याय में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वत त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्जुन। अर्जुन में जब आता हूं तब ऐसी दिव्य लीलाएं करता हूं, जब मैं आता हूं तो ऐसी दिव्य लीलाएं करता हूं, मेरा इस दुनिया में आना भी साधारण नहीं है, अलौकिक है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, और मैं जो कुछ इस दुनिया में करता हूं इतना मधुर होता है और इतना ललित होता है और इतना प्रेम रस से भरा होता है कि मेरे जाने के बाद करोड़ों सालों तक लोग उसका श्रवण करते संसार के बंधन से मुक्त होते रहते हैं। ये जब उत्तर दिया अर्जुन को बहुत बड़ी संतुष्टि हुई। हाँ भगवान इसलिए आते हैं कि इतना सुंदर अपना पीछे लीलाओं का रसमय लीला का अर्थ क्या होता है, जिसको सुन के आदमी लय हो जाए। लय होने का मतलब संसार की सारी दुख पीड़ाएं उसको भूल जाए, उसको लीला बोलते हैं। लयति इति लीला, जिसके श्रवण करने से हमें सब कुछ भूल जाए और हम एक थोड़ी देर के लिए तो इस दुनिया के सारे दुख हमारे दिमाग से निकल जाए, उसको लीला बोलते हैं। भगवान इतनी अपनी दिव्य लीला। तो यहां जो है भगवान का बहुत सुंदर ये वर्णन है कि कृष्ण उनका नाम है, गोकुल उनका धाम है और यही भगवान है। ये भगवान शब्द भी पराशर ऋषि ने पहली बार भगवान शब्द की व्याख्या की है, व्यास देव के पिता ने। षड गुण संपन्न, जिसमें छह गुण अनंत और असीम हो उसको भगवान कहते हैं। सुंदरता, ऐश्वर्य, यश, ज्ञान, वैराग्य, सद्गुण संपन्न असीम जिसमें हो। एक आदमी बहुत बड़ा धनवान हो सकता है लेकिन सुंदर हो जरूरी नहीं है, सुंदर हो सकता है लेकिन त्यागी हो जरूरी नहीं है। सब जिसमें हो उसका, उसके लिए भगवान शब्द का उपयोग होता है। और ये पराशर ऋषि ने इस शब्द को, ये छह गुण संपन्न को भगवान कहा है। और फिर आगे क्या लिखा है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है और ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम। भगवान जब नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए ना तो बड़े क्रोध में थे। हिरण्यकश्यप को तो मारा, मारने के बाद क्रोध इतना हुआ, शंकर जी आए, ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए, चंद्र आए, वरुण आए, सारे देवता आए, मुनिगण आए, नारद आदि ऋषि आए, गंधर्व जी सब प्रार्थना जैसे करे, हे महाराज आपने हमारे, और ज्यादा क्रोध आ जाए नरसिंहदेव को। जैसी प्रार्थना करे ऐसे क्रोध बढ़ता जाए। सबने विनती की, लक्ष्मी को जरा आप शांत कीजिए आपके पति देव को। लक्ष्मी ने थोड़ी देर के लिए विचार किया कि मैं शांत करने का प्रयास करती हूँ। आगे बढ़ के लक्ष्मी रुक गई, बोला आज मैं नजदीक नहीं जाऊंगी, इनका मूड ठीक नहीं है। आज लक्ष्मी भी आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। उस वक्त ब्रह्मा जी ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे लिए प्रकट हुए हैं, तुम ही जाके इनको शांत करो। छोटा सा प्रहलाद आगे आके क्या प्रणाम करता है, नरसिंह देव ने ऐसे उसको उठा के गोद में बिठाया और बिठा के चाटने लगे। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे नरसिंह देव बैठ के बच्चे को चाटने लगे। और उस वक्त नरसिंह देव ने देखा कि सुख जो प्रहलाद को मेरी गोद में मिल रहा है वो मुझसे बहुत ज्यादा है। आप देखिए, आपके घर में आपका बच्चा जब कोई मेहमान आएगा उस वक्त आपकी गोद में आके बैठने का प्रयास करेगा, देखा है कभी? उसी वक्त आपके पास आएगा जब कोई मेहमान आएगा या किसी काम में, वो दूसरों को दिखाना चाहता है कि ये मेरा पिता है, इसकी गोद में मैं बैठता हूँ, मुझे इसको मैं अच्छा लगता हूँ, ये उसकी साइकोलॉजी। और उसी वक्त हम उसको भगाने का प्रयास करते हैं, तुम जाओ। ऐसे करना नहीं चाहिए। ऐसे तो द्रु के साथ किया था उसकी मां ने। सूर्य ने नहीं बैठने दिया था द्रु को उत्तानपाद की गोद में, वो ब्रह्मा जी का पहला बेटा था। द्रु को बहुत क्रोध आ गया था। वहां से सीखना चाहिए कि जब बच्चा गोद में आके बैठना चाहे तब उसको बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ बिठाना चाहिए और दूसरे को बताना चाहिए कि हमारा पुत्र बहुत स्नेह करता है, प्रेम करता है, बड़ा सेवादारी है। ये बात सुन के बच्चा सेवादारी बनेगा। भगाओगे तो वो भी आगे जाओ, आप भगाओगे तो वो कौन सा प्रेम करे। तब कहना चाहिए ये मर्यादा में, ये शिक्षा है, ये शिक्षा लेनी चाहिए हमको। तो उस वक्त नरसिंह देव भगवान ने कहा, इसका अर्थ ये हुआ कि माँ के या पिता के या माता की गोद में जब बेटा बैठता है उसको, बच्चे को जितना सुख मिलता है इतना माता पिता को नहीं मिलता है। माता पिता से बच्चे को ज्यादा सुख मिलता है गोद में, क्यों भाई? आपकी उठाने का शौक ज्यादा है गोद में या बच्चे का चरने का ज्यादा है? माता जी आप बोलो, बच्चे को आप गोद में ज्यादा उठाते हैं कि बच्चा ज्यादा चरना चाहता है? हाँ जी, मैं माता जी ने पूछ रहे हैं, क्या बोलिए आप बेटा? बच्चा जबरदस्ती चरना चाहता है ना, क्यों? उसको अच्छा लगता है इसलिए ना। आज नरसिंह देव ने सोचा, अरे देखो तो सही, बच्चा बनने में कितना सुख है माता पिता की गोद में खेलने का। नरसिंह, मेरा भी माता पिता होता तो मैं बैठता पीछे, देखा खंभा, अरे खंभे माता पिता है, खंभे की गोद में क्या बैठना है। तब नरसिंह देव ने ये संकल्प कर दिया, आज के बाद जब कभी भी मुझे अवतार लेना पड़ेगा भक्तों के लिए, तब मैं किसी अपने भक्त को माता और पिता चुन लूंगा और उनकी गोद में खेल के उसका आनंद भी लूंगा। हरे कृष्णा, अभी आएगा, मोर उड़ गया रात को। अच्छा है, मोर के पंख याद आने से भगवान श्री कृष्ण की याद आती है। एक ही सिखी पुछी तटे, और जिस सिखी पुछ मोर के पुछ को जो धारण करता है तो एक ही गोपाल करता है और कोई नहीं करता है। उसके संबंध की चीज को याद करना भी भगवान को याद करने के बराबर है, तदीय वस्तु हो जाती है। तो नरसिंह देव ने आज संकल्प किया कि आज के बाद जब भी अवतार लेना है तो माता पिता को, फिर राम जी के अवतार में आए तो कौशल्या माँ को और दशरथ को माता पिता करके उनकी गोद में खोल के खेल का ये आनंद लिया। तब से भगवान की ये भावना है। तो यहाँ जो भगवान के नित्य माता पिता है, यशोदा और नंद का वर्णन किया है, जबकि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के यहाँ कंस के कारागार में मथुरा में प्रकट हुए थे। बहुत बड़ी रहस्य की बात है। यशोदा जिनकी मैया है लिखा है, ये बहुत रहस्य है। अभी तो इसको नहीं खोल के कहना चाहते हैं, लेकिन अभी ऐसे ही मान लीजिए कि बाल लीलाएं कृष्ण की 11 साल तक केवल ब्रज में हुई और इन लीलाओं का दर्शन केवल यशोदा और नंद बाबा और गोप ग्वाल कर सके और गोपियां कर सकी। यशो देवकी और वसुदेव ने तो कृष्ण को 11 साल के बाद ही देखा। सूत्री ग्रह से, सूतकी ग्रह से तो रवाना किया था बच्चे को जन्म प्रकट होते ही। कैसे प्रकट हुआ था ये तो भागवत में पढ़ेंगे तो चतुर्भुजम अद्भुत बालकम शंख चक्र गदा आयुध, चार हाथों वाला शंख चक्र गदा लिए हुए प्रकट हुआ था माँ यशोदा के सामने और सब माँ देवकी के सामने और वसुदेव के सामने। और प्रकट होते ही कहा था, आपने पहले मेरी तपस्या की थी, आपने मेरे जैसा बेटा मांगा था और मैं मेरे जैसा बेटा दे नहीं पाया, जब नहीं दे पाया तो मुझे 3 बार आपका बेटा बनना पड़ा, तब मेरा वचन सत्य हो सकता है। अब भगवान जन्म प्रकट होते ही अपने माता पिता से बात कर रहे थे। जब देवकी ने कहा कि आप बालक बन जाओ, तब भगवान बालक बने। तो ये बहुत रहस्य की, भागवत में तो लिखा है कि भगवान वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए और वसुदेव के हृदय से देवकी के मन के अंदर स्थापित हुए। जैसे सूर्य का प्रकाश, रात को सूर्य अस्त होते ही चंद्रमा प्रकाशित हो जाता है, ऐसे वसुदेव से देवकी, जैसे गुरु शिष्य को दीक्षा देता है उसके हृदय में भगवान को स्थापित करता है, ऐसे ये बालक का प्रकट्य हुआ है। स्त्री पुरुष के मिलन से हुआ, ऐसा वर्णन भागवत में नहीं। तो इसलिए यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को क्या, जब ये दो माता पिता थे तो काम क्या करते थे, बोला गोपाल था, गायों का कहा गाय की पालन करता था, गाय गोपाल है, भगवान का बहुत बड़ा सुंदर नाम गोपाल और गोविंद भगवान का नाम। तो एक गाय ने ही, सुरभि गाय ने और इंद्र ने जब भगवान का अभिषेक किया गोवर्धन धारण करने के बाद, उस दिन भगवान का नाम गोविंद नाम घोषित किया, गौ की रक्षा करने वाला, गौ को आनंद देने वाला गोविंद, गौपाल गाय को पालने वाला। तो भगवान जब प्रकट हुए तो एक वैश्य परिवार में रहे, कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, भगवत गीता कहती है कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम, वैश्य का कर्म है व्यापार करना, जमींदारी करना, खेत की देखभाल करना और गाय पालना, पशु पालना, ये वैश्य का कर्म है। तो भगवान जब प्रकट हुए तो कृष्ण ने क्या काम किया, गोपाल और बलराम जी के हाथ में क्या है, हल, एक ने गाय की रक्षा की और एक ने खेती का, हल किसका चिन्ह है, कृषि का चिन्ह है, तो दोनों वैश्य। और इसलिए वैश्य एक ही वैश्य वर्ण है जो पेट के बराबर है, ये पेट है ना, कमाए हाथ, यूज करे दिमाग, चले पांव, तब भी डालना पेट में पड़ेगा। पेट से ताकत दिमाग को मिलेगी, हाथ को मिलेगी, पांव को भी मिलेगी। केवल वैश्य है जो इस हमारे समाज को, मानव समाज को पालन पोषण करने वाला केवल वैश्य है। ब्राह्मण दान लेता है, क्षत्रिय टैक्स लेता है और शूद्र तनख्वाह लेता है और तीनों को वैश्य देता है। तीनों का पालन पोषण केवल वैश्य करता है। इसका मतलब संस्कृति तब चलेगी जब समृद्धिशाली वैश्य होगा और भगवान ने इसलिए ये इस 11 साल तक इस वैश्य कम्युनिटी के अंदर गोपों के अंदर गाय गौ रक्षा और यही कार्य किया। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक ये कम्युनिटी है। आज भी टैक्स तो देना ही पड़ता है सरकार को, कैसे भी दो, चाहे टैक्स में रूप में दो या दूसरे रास्ते में दो, ऊपर से दो टेबल के या नीचे देना तो पड़ेगा, कोई छोड़ा नहीं सकता है। और लेबर का, मजदूर का पैसा रखने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता है, वो तो हड़ताल कर देते हैं आजकल। इन दोनों का तो पैसा कोई रख नहीं सकता है, लेकिन किसका पैसा सिर्फ मारा जाता है आजकल? मार्गदर्शन करने वाले का। ब्राह्मण को जो पहले जमाने में ब्राह्मण का काम क्या होता था, आपके बच्चों को पढ़ाना। कैसे पढ़ाना? गुरुकुल के अंदर पढ़ाना। पैसा कभी नहीं लेना पढ़ाने का, भोजन भी अपनी तरफ से खिलाना, कपड़ा भी अपनी तरफ से देना, पुस्तक भी अपनी तरफ से देना। इसलिए उस ब्राह्मण के लिए सारे ही वैश्य, क्योंकि हमारे बच्चों को और हमारे सारे बच्चों को पढ़ाता है, उनका देखभाल करता है, सारी संस्कृति की रक्षा करता है, इसलिए उसको दिया जाता था। जब से पैसा देके पढ़ाना शुरू किया हो गया है, तब से सारी संस्कृति का सत्यानाश हो गया। अब कल मैं किसी को कहता 25 लाख रुपया देके एक आदमी मेडिकल में सिलेक्ट होता है डॉक्टर होने के लिए, 25 लाख देके जो डॉक्टर बनेगा वो क्यों सेवा करेगा मुफ्त की? वो तो पहले अपना 25 लाख निकालेगा कि नहीं निकालेगा सीधा, और ब्याज के साथ निकालेगा कि नहीं निकालेगा, तो क्यों सेवा करेगा फिर? फिर क्यों रोते हैं कि डॉक्टर जो बहुत बड़ा कैसे डॉक्टर है, एक आदमी गया डॉक्टर के पास और कहा कि मुझे बहुत तकलीफ है। बोला क्या तकलीफ? बोला पसीना नहीं आता है। डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, कागज दे दिया। बोला दवाई? बोला दवाई की जरूरत नहीं है। बोला क्यों, कैसे? ठीक कैसे हुआ? बोला मेरा बिल देखो, तेरे को तेरे बाप को भी पसीना आएगा। पसीना मेरे को नहीं आता है, इसका इलाज और कोई नहीं, मेरा बिल काफी है। तो ऐसा क्यों डॉक्टर कर रहे हैं? 7 लाख रुपये बाईपास के लेते, वो ही बाईपास मुफ्त में करते हैं, वो नली की कीमत 50 रुपये भी नहीं होगी, क्यों लेते हो? वो 25 लाख जो देते आए वो पूरे करेंगे ना कंपाउंड ब्याज के साथ, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं ऐसे पढ़े लिखे आगे चल के इस देश की सेवा करेंगे? नहीं करेंगे ना। जो इंजीनियर 50-25 लाख रुपए देके पढ़ के आएगा, वो पुल आपके ऊपर गिरे तो भले गिरे, लेकिन उसको तो पैसा निकालना है ना, एक रोड सीधा नहीं है। क्यों? अगर बिहार के रोड ऐसे कभी 4 पहिये गाड़ी के रोड पे होते ही नहीं है, 1 पहिया हमेशा ऊपर होता है। अब सब जगह क्यों ऐसे, वो क्यों नहीं करे ऐसे? आपने उसकी शिक्षा ही ऐसी दी है ना, तो शिक्षा पद्धति खराब हो गई ना। शिक्षा देने वालों को ही हमने निरादर कर दिया, बहुत बड़ी समस्या है। ये पीढ़ी तो अभी किसी काम की नहीं है, आगे चल के ये और लूटेगी, लूट खसोट इससे ज्यादा बढ़ेगी। अगर कोई बुद्धिमान है तो आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिए कुछ सोचे कि भविष्य में अगर इस देश का जो सनातन संस्कृति का रक्षक रहा है, पूरी दुनिया का गुरु रहा है, उसकी अगर हमारे को संरक्षण करना है तो आने वाली पीढ़ियों को सदमार्ग के चलाने के लिए कोई न कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये जो व्यवस्था मेकाली वाली है, पढ़ने के बाद नौकरी के लिए हाथ में उठा के सर्टिफिकेट हमारे को नौकरी चाहिए, ये इस पद्धति भारत संस्कृति की शिक्षा की पद्धति नहीं। विद्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए ली जाती है, नौकरी के लिए ली जाती, नौकरी तो ऐसे ही मिलती। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि भगवान वैश्य परिवार के अंदर, वैश्य अपने भक्तों के गाय का पालन किया, गौ रक्षा और कृषि, ये वैश्य अगर समृद्धिशाली इन चीजों में। आज भी आप सोच लीजिए, हमने खेती बंद कर ली तो क्या फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दी, को खाएंगे क्या? भूख लगेगी तो रोटी खाएंगे क्या, नट बोल्ट खाएंगे? ये जो फैक्ट्रियां जितनी लग रही है, ये इंडस्ट्री जितनी लग रही है, पॉल्यूशन चारों ओर जितनी हो रही है, ये लोग जो गांव में काम नहीं करते हैं, खेत में और फैक्ट्री में आसानी से 2 टाइम का तनख्वाह निकाल लेते हैं, लेकिन खाएंगे क्या? समस्या नहीं रहेगी आगे चल के? पैसा ज्यादा हो जाने से एक दाना चावल का किसी फैक्ट्री में आज तक किसी विज्ञानी ने आज तक नहीं बना सका है। आपकी स्पेसशिप तो चांद पे जाए चली जाए, लेकिन एक दाना चावल का, एक दाना गेहूं का, एक भी वैज्ञानिक आज तक इस धरती के ऊपर बना नहीं पाया। धरती है, उससे उगेगा तब खाएंगे। और ये भगवत गीता आज भी उतनी उपयोगी है, जिसमें भगवान कहते हैं अनाद भवती भूतानी पर्जन्याद अन्न संभव, सारे प्राणी अन्न खाएंगे तब जिएंगे, और अन्न तब होगा जब बरसात होगी, और बरसात तब होगी जब आप यज्ञ करोगे, और यज्ञ आपका कर्म यज्ञ करना है। आप कहते हैं बरसात नहीं होती है या इतनी ज्यादा होती है कि बाढ़ आती है, क्यों? क्योंकि हम अपना कर्म नहीं कर रहे, हम अपना यज्ञ नहीं कर रहे। आप राजस्थान के लोगों को तो परिचय होगा कि पुराने जमाने में बरसात नहीं होती थी, यज्ञ करते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ की समाप्ति के समय बरसात आती थी, पूर्ण आहुति हुई और बरसात आती थी, हमने आंखों से देखा हुआ ही। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ है, ये भी हमने देखा अपने गांव में। हम तो राजस्थान से, हमारा भी तो जन्म राजस्थान के बहुत अंदर के भाग का है, बाड़मेर से आगे अभी तो चला गया पाकिस्तान के अंदर टुकड़ा सिंध में। हम 24 घंटे का तीन तीन दिन कंटिन्यूस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे, बरसात नहीं आती थी, अखंड कीर्तन होता था, तीन दिन पूरे हुए तो बरसात आती थी। तो ये कलयुग का यज्ञ है, नाम संकीर्तन कलयुग का यज्ञ है। और ये यज्ञ होने लगे तो कोई भगवान के पास कोई कमी नहीं। दूसरी आपको एक धोखा बहुत बड़ा दुनिया आजकल दे रही है कि पानी खत्म हो जाएगा दुनिया में, ये समस्या है कि बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे लोग, और इसका प्रमाण क्या है कि हम 12 रुपए का एक लीटर पानी लेके पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? 12 रुपए लीटर दूध 12 रुपए मिलता था तो महंगा लगता था, पानी 12 रुपए में शौक से लेके पी रहे। ये भी किसी ने हमारे दिमाग में ऐसा भूत बिठाया है कि पानी खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ी परेशानी होगी। इस धरती के ऊपर कितना पानी है, समुद्र का सूखा कितना, 3/4 समुद्र है ना, और 1/4 धरती है ना, और समुद्र में भगवान ने प्रिजर्वेटिव डाला है, कभी खराब ही नहीं होगा पानी उसका, और ये बरसात का पानी समुद्र से तो बनता है, तो क्या समुद्र खत्म सूख जाएंगे? क्या समुद्र सूखेंगे? नहीं सूखेंगे तो पानी खत्म कभी नहीं होगा, लेकिन बरसात होगी कि नहीं होगी ये तुम्हारे कर्म के ऊपर है। अगर हम अपना यज्ञ कर्म करेंगे तो हर समय बरसात आने में कोई देर नहीं लगेगी, पानी कभी खत्म होगा ये संभव नहीं है। भगवान की कोई चीज में कमी नहीं आने वाली है, वो असीम है, उसके पास किसी चीज का, हमारे आंखों के सामने 3/4 समुद्र पानी का पड़ा है ना, खारे का पी नहीं सकते। आकाश में उसी को बादल बना देता है सूरज की शक्ति से, न कोई पाइप है, न कोई बिजली है, न कोई बटन है, लेकिन ऊपर में वही मीठा पानी होता है कि नहीं होता है, और नीचे बरसता है, नदियों में बहता है कि नहीं बहता है। तो ये भगवान करने में, और कहते हैं भगवान 9वें अध्याय में वर्षामी निग्रहामी च, मेरी इच्छा है मैं बरसाऊं, मेरी इच्छा है तो नहीं बरसाऊं। तो कब बरसाओगे भगवान? वह जब भक्त बैठ के मेरा कीर्तन करेंगे तो मैं इष्ट काम धुक सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा प्रवाच प्रजापति ही। तीसरे अध्याय भगवद गीता का कर्म योग का ये श्लोक है। भगवान कहते हैं मैंने देवताओं को पैदा किया, फिर मानव को पैदा किया, उसके साथ यज्ञ को पैदा किया, और मैंने ये आदेश दिया कि इस यज्ञ को करो, ये काम धेनु है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा ये यज्ञ, आपकी सारी इष्ट काम धुक, इस यज्ञ से आपकी सब इच्छाएं पूरी होंगी। कौन सा यज्ञ करें? तो भगवान ने 10वें अध्याय भगवत गीता में कह दिया यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, जितने यज्ञ हैं उसमें मेरा स्वरूप जप नाम का यज्ञ है। भगवान के नाम को ऐसे माला के ऊपर बैठ के उच्चारण करने को जप बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप है। 7 मिनट लगते हैं एक माला करने में, आदमी रोज पेस्ट करता है, छोटे बच्चे को भी बोलते हैं बेटा दांत साफ कर ले, करते हैं कि नहीं करते? लेकिन दिल साफ करने के लिए ये भगवान का नाम रोज जपना चाहिए, 7 मिनट लगते हैं रोज नेम से जपने का। हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य है, ये धर्म है, ये करना चाहिए, ये यज्ञ है। ये यज्ञ एक करने से हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, एक ही काम करने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन नित्य से करने के लिए संकल्प करना पड़ेगा। तो ये इसी भजन के ऊपर हम 3 सत्र में सत्संग करेंगे कि ये आगे चल के ग्रस्त का भी समाचार देगा, बाल का भी समाचार देगा, जवानी का भी समाचार देगा, काम क्या करना चाहिए, और फिर जाने के पीछे बाद में क्या करके जाना चाहिए। तो इसी के अपन ऊपर चर्चा करेंगे, ये भजन के ऊपर ही कल सुबह भी कितने बजे, 8 से 10 बजे तक सुबह, और कल सायंकाल को 6 से 8 बजे तक। तो मेरे ख्याल में समय कितना हो गया, पौने नौ हुए हैं, 15 मिनट हम आपके लिए रखते हैं प्रश्न उत्तर, कोई आपकी जिज्ञासा हो, कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। लेकिन ये बातें हमने सिर्फ की कि भगवान का नाम होता है इसलिए हमारा नाम है, भगवान का धाम होता है या गांव होता है इसलिए हमारा भी कोई गांव होता है, भगवान के लिए माता पिता होते हैं, भगवान अपने भक्तों को माता पिता करके इस संसार में आते हैं और तभी तो हमारा इस दुनिया में संबंध ये होता है। ये भी भगवान हमको दिखाते हैं कि हम में से सबका कोई न कोई भगवान के साथ संबंध है जिसको हम भूल गए हैं। कोई जैसे लड्डू गोपाल घर में रखा है इसका मतलब हमारा बेटा है छोटा, हम उसके माता पिता होते हैं। ये वात्सल्य भाव की पूजा है, छोटे गोपाल के घर में लड्डू खिलाना है, मक्खन खिलाना है, गोपाल को जगाना है, उठाना है, तो इसमें यशोदा माँ के भावों को सीखना चाहिए कि कैसे वो लाला को लिए मक्खन निकालती थी। जैसे कोई सखा है गीता को पढ़ने का अभ्यास करता है तो अर्जुन की तरह भगवान के साथ हमारा मैत्री संबंध है, कोई दास की तरह हनुमान की तरह भगवान की सेवा में दास बन के खड़ा होता है हर वक्त, तो हमारा भगवान के साथ नित्य संबंध है जिसको हम भूल गए इसलिए इस दुनिया में दुखी हैं। उस संबंध को पुनः भगवान की कथा से जैसे हम याद करेंगे हमारे दुख दूर हो जाएंगे, वापस हम अपने असली स्थान के ऊपर अपने असली घर में भगवान के धाम में जाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। आपके कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो हम 15 मिनट का आपके लिए इसके लिए रखते हैं। प्रसाद है क्या देने वाला हाथ का, क्या प्रसाद के हाथ प्रसाद क्या बार है ना, मतलब जाते हुए प्रसाद है अभी डिनर प्रसाद, तो सबका प्रसाद भोजन यहाँ सबको लेना है और कल भी सबको नाश्ता यही करना है आके प्रसाद भगवान का। तो आप कुछ जिज्ञासा है तो पूछिए और नहीं तो कल तक याद। हम प्रभु जी क्या नाम बेटा, बैठ बैठ बैठ
कमल,
कमल बोलिए, अच्छा है बोलिए कमल, जो इस दुनिया में रहने का पदम पत्रम इवाम भसा, जल में रहने वाला, जल जिसको नहीं छू सकता है, बोलिए कमल जी।
आपके दिव्य चरणों में प्रणाम।
हरे कृष्णा।
अरे जी मेरा ये सिचुएशन है, ये प्रश्न है कि जब माला जपते हैं तो ध्यान नहीं लगता है, कई बार ध्यान आगे पीछे भटक जाता है, तो इसके लिए क्या उपाय है?
कोई बात नहीं, आप काम क्या करते हैं वैसे कमल जी?
ये कपड़े की दुकान है।
कपड़े की दुकान है, आप दुकान के ऊपर बैठे होते हो
जी।
आपके घर में मानो कि कोई खास शादी होने वाली है अथवा कोई अस्पताल में गया होता है तो दुकान पे बैठे हो तब आपका ध्यान लगता है दुकान के काम में, घर में होता है कि नहीं होता है? लेकिन ग्राहक आता है तो उससे पैसे लेते हो गिनके कि नहीं लेते हो? लेकिन ध्यान घर में होता है फिर भी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक आदमी नौकरी करता है, घर में काम छोड़ के गया है, ऑफिस में बैठा हुआ है, तो उसको तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ अगर आप पहले सिर्फ बैठना शुरू करें जब के लिए तो भगवान कहेगा ये मेरे लिए बैठा है, इसका मन नहीं लगता है क्योंकि कई जन्मों से इसका मन भटक रहा है, इसको टाइम लगेगा, लेकिन परवाह नहीं, मेरे लिए बैठा है, भगवान को तो याद है कि उसके लिए बैठे हो। नाम जपने में हमारा बल नहीं है, नाम का बल है। ये छठे स्कंद श्रीमद् भागवत में इसके ऊपर पूरे 3 अध्याय हैं। जब हम राम कहते हैं या नारायण कहते हैं या कृष्ण गोविंद कहते हैं तो हमारे कहने के ताकत से नहीं, भगवान अपने नाम के बल से भगवान हमारा उद्धार करता है। तो मन लगे न लगे लेकिन बैठ के जप करना चाहिए, तो एक दिन आस्ते आस्ते मन भी लगेगा, लेकिन मन लगेगा फिर करेंगे ये कभी नहीं होगा। ये तो ऐसे है कि एक आदमी नहाने जा रहा था समुद्र के ऊपर, सुबह हम गए तो गमछा हाथ में लेके जा रहा था, शाम को आए तो बैठा हुआ था, अरे भाई नहाया नहीं, बोला छोलियां आ रही हैं ये बंद हो जाएंगी तो फिर नहाएंगे। अरे समुद्र में कभी छोलियां बंद नहीं होती, बोला फिर इसके अंदर कूदोगे तब नहाओगे। तो ये मन की छोलियां कभी खत्म होने वाली नहीं है, कूदेगा वही नहा के बाहर निकलेगा, समुद्र की छोलियां खत्म नहीं होंगी और मन का भटकना खत्म नहीं होगा। लेकिन बैठने के लिए, अरे हाथ पांव तो अपने हाथ में, बैठने का तो अभ्यास कर सकते हैं ना, 8-10 मिनट बैठोगे तो भगवान कहेगा मेरे लिए बैठा हुआ है। भगवान कृष्णा इज मोर डिवोटी कॉन्शियस देन डिवोटी इज कृष्णा कॉन्शियस। भगवान अपने भक्तों का ज्यादा याद रखते हैं जितना भक्त भगवान को याद नहीं करते, इसलिए बैठने का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान लगेगा कब? जो कहते हैं ध्यान लगता है, एक आदमी तो यहां तक एक महात्मा ने कहा है, कोई कहे कि मेरे बस में मन हो गया है तो मैं विश्वास नहीं करूंगा, कोई ये कह दे कि मेरे घर में बिजली नहीं है, रात को मेरा पिताजी ऐसे ऊपर हाथ करके तारा लाता है, एक तारा लगाते हैं रोशनी आ जाती है, तो मैं मान लूंगा। कोई कहे कि समुद्र का सारा पानी हम पी जाते हैं तो मान लेंगे, लेकिन कोई कहे कि मन मेरे बस में है, हमारे को मानने में विश्वास नहीं है, क्योंकि मन ना पीपल का पन, हाथी का कन और आदमी का मन कभी एक जगह नहीं ठहरते हैं। देखा है, पीपल हवा ना हो या ना हो, पीपल का पन ऐसे करेगा और हाथी का कान ऐसे और आदमी का मन कभी स्थिर नहीं होने वाले। इसलिए जहां हो वहां से शुरू करो। क्या लिखा है? हाँ, क्या कहने? सनक ऋषिदास, ये सनक ऋषिदास जो दिनों से यहाँ पधारे हैं, है तो पुराने ऑफिसर आईएएस ऑफिसर, इनका बच्चा भक्त है, ये भी भक्त हैं, हमारे बालक ने उनको फोन किया तो आए हैं, दो मिनट कुछ कहना चाहते हैं तो उनका स्वागत। वो माता जी के लिए जो लेडीज सत्संग है, हा? कोई भी आ सकता है, वो तीन से चार सत्संग भवन में सत्संग रहेगा। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, और कोई प्रश्न है तो कल लिख के लाइएगा, आधा घंटा कल सुबह प्रश्न के लिए रखेंगे, आधा घंटा कल शाम को भी रखेंगे, क्योंकि जब तक पूछेंगे नहीं तब तक इसका मतलब हम समझने का प्रयास करेंगे तब पूछेंगे ना, तो हमको समझने का प्रयास करना चाहिए और पूछने का अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, आपका अधिक समय मुझे न छोड़ना, महाराज जी ने बहुत विस्तार से मुख्य बातों को बताया।
ये चल रहा है माइक?
हाँ चल रहा, आवाज आवाज आपकी। एक तो